तजरीबात की दुनिया, तजरीबात की दुनिया, तजरीबात की दुनिया, तजरीबात की दुनिया। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
ہمارا موضوع سفر ہے سلسلے کا نام ہے تجربات کی دنیا اس وقت سفر ہی سفر ہے بلکہ سفر کے تعلق سے تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یورو جیسے مسافر رہتا ہے یہ سارا سفر ہے ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے بھی سفر کر کے آگے جانا ہے مگر یہاں پر بس کا سفر بھی ہے ٹرین کا سفر ہے گاڑی کا سفر ہے جہاز کا سفر ہے تو ہر ایک کو اپنے اپنے کہیں نہ کہیں سفر کے تجربات ہوتے ہیں اور چونکہ دنیا میں سفر ابھی جاری ہے اور جاری رہتا ہی ہے بہت مشکل ہے کہ لوگ سفر بھائی کووڈ میں بند بہت ہے سفر باقی تو سفر ہی سفر ہے اور اب تو اتنا سفر ہے کہ لگتا ہے وہ پچھلی وہ قضائیں بھی ادا ہو رہی ہیں سفر کرنے والوں کی نہ جہازوں میں جگہ ہے نہ ٹرینوں میں جگہ ہے اور بڑے مطلب کہ ایریا بھرے ہوئے ہیں حالانکہ مہنگائی بہت ہے مگر سفر ختم نہیں ہو رہا سفر کم بھی نہیں ہو رہا بہت مہنگائی ہے ٹکٹیں مہنگی پیٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی ہے کھانا پینا گروسری سب مہنگا ہے ہوٹلنگ مہنگی ہو گئی لیکن جب دنیا بھر کا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں سفر ٹریولنگ کم ہوتی ہمیں نہیں نظر آ رہی اور ٹوریزم بھی کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ٹوریزم بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑھ گیا ہے یہ ٹوریزم انڈسٹری گرو کر رہی ہے جن جن ملکوں کی پوری ان کی جو معیشت ہے وہ ٹوریزم پر ہے تو انہوں نے ٹوریزم کو اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے کہ ڈیفینیٹ دنیا بھر کے لوگوں کو وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئیں کیونکہ ٹوریزم کی بھی کیا بات کرو بات تو کرتے ہیں مدینے کی پچھلے تقریباً سمجھے کہ دو تین سال کی اگر کووڈ کے بعد کی بات کریں آہستہ 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 بات کریں تو کل ایک وقت تھا کہ دو سیزن مشہور تھے حج کا سیزن اور رمضان شریف عمرے کا سیزن یہ دو سیزن زیادہ مشہور تھے کہ یہاں کراؤڈ مطلب عاشقان رسول زیادہ تعداد میں وہاں جاتے ہیں لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہے یہ پورا سال الحمدللہ آپ کو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں عاشقان رسول کی بھیڑ نظر آئے گی اور عاشقان رسول کا آنا جانا نظر آئے گا حالانکہ واقعی ٹریولنگ یہ اس کی جو کاسٹ ہے یہ بڑھ چکی ہے لیکن جانے کا جذبہ بھی کم نہیں ہوا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اوورال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سفر سے ریلیٹڈ ہے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کا بھی دنیا بھر میں سفر ہوتا ہے تو اپنے اپنی ایکسپیرینس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے اور کہ اگر کسی نے کوئی ایسا سفر کیا اور سفر میں ان کو کوئی ایسے تجربات ہوئے ہیں یا وہ کوئی ایسی بات بیان کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کر لینی چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہنا سننا سمجھنا ہو سکتا ہمارے کسی کام آ سکے تو شہزاد آپ سے شروع کرتے ہیں سفر کے تعلق سے آپ کے بھی سفر تو ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں سفر کے تعلق سے
آپ نے جو سفر کا ذکر کیا زندگی کا ذکر کیا تو زندگی تو پوری ایک سفر کا انعام ہے اور ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سفر میں وہ سکندر ہو کے دارا چار دن ہے یہاں سب کا گزارا چار دن اب چار دن کے لیے آئے ہیں میں مختلف سفر کیے ہیں سائیکل گدھا گاڑی سے لے کر جہاز تک کا سفر کیا میں نے اور مختلف ایکسپیرینس سے رہے لیکن
سائیکل اور گدھا گاڑی تو ایسے وہ سواری کے استعمال کی نا سفر کے لیے تو نہیں کی
لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں تو اس کو سفر کہیں گے نا
چلو مان لیتے چلے آپ
تو بڑے ایکسائٹیڈ سفر ہوتے ہیں جیسے اگر فرسٹ ٹائم اگر کوئی جہاز میں بیٹھے تو بڑا ایکسائٹیڈ
ہوتا ہے وہ اتنا ایکسائٹیڈ نہیں جتنا گدھا ایکسائٹیڈ ہے
ہاں گدھا
بھائی صاحب اگر پہلے ہم جائیں یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں گدھا گاڑی کی اگر پچھلے دور میں جائیں تو سفر تو
اونٹوں
اور گھوڑوں پر سفر ہوا ہی کرتے تھے اور وہ
اصل میں یہ
ترئی سفر ہی ہوا کرتے تھے
یہ ہی سفر یہ ان کے جو میجر استعمال تھے اونٹ کا استعمال گھوڑے کا استعمال اور گدھے جس کو ہم کھوتا کے بھی کہتے ہیں دراز گوش کہتے ہیں یہ ہے کھچر ہے ये और भी जानवर थे, इनको बतौर सवारी और बाज़ जगह पर हाथी को बतौर सवारी लिया गया है और वो भी सफ़र के तौर पर लिए गए हैं। तो ये जानवर तो सफ़र के लिए इस्तेमाल हुए हैं।
अच्छा, एक अभी सफ़र की बात हुई, थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने कहा कि चलें सफ़र के प्रोग्राम में ही पूछेंगे, तजुर्बात की दुनिया में सफ़र की बात आएगी। कि एक जगह मैंने पढ़ा था, आप उसकी तस्दीक करेंगे, जैसे कहा जाता है कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, और कहीं कहीं कहा जाता है कि सफ़र अजाब का टुकड़ा है। तो ये वसीला ज़फ़र किस मतलब किन हालात में कहा जाता है, और अजाब का टुकड़ा किन हालात में कहा गया?
देखिए, ये तो हदीस में है कि सफ़र अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये तो हदीस के पाक का बाकायदा एक हिस्सा है और हदीस पाक का एक मजमून है जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि सफ़र अजाबों का टुकड़ा, क्योंकि सफ़र में आपका चैन, आराम, खाना पीना, सुकून, कई चीज़ें आपकी कंप्रोमाइज और डिस्टर्ब हो रही होती हैं। तो सफ़र को इस तरह बयान किया गया है। सफ़र वसीला ज़फ़र, यानी जब आप सफ़र करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो रही होती है, कुछ ना कुछ कामयाबी नज़र आ रही होती है, कुछ ना कुछ आप हासिल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। इवन कि अगर कोई सफ़र करके लूज़ भी करता है ना, तो उसका लूज़ करना भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर लाता है कि वो उससे वो सीखता है। तो बस आपका सफ़र से कुछ गिरहें भी खुलती हैं, सफ़र करने से मामलात भी हल हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें, तो सफ़र ये कॉल है, सफ़र वसीला है सफ़र। बाद वक़्त बुजुर्ग दुआ देते हैं इस तरह कि अल्लाह आपके सफ़र को वसीला है सफ़र बना दे। मैं मुझे खुद अमीर हुसैन चंद दफ़ा कहा है कि जो मैं कहा भी ना, तो अल्लाह पाक जो सफ़र वसीला है सफ़र कड़ी लिया, तो ये हो जाता है। और हमने देखा है जब अमीर हुसैन ने दुआ दी है, जहाँ जाएँ आपके जाने कदम, जहाँ आपके कदम पहुँचे उससे पहले कामयाबी पहुँची हुई हो, हमने देखा है कि कामयाबी वहाँ वाकई पहुँची हुई होती है और हम कामयाबी के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं, तो वो दुआएं पहुँचा देती हैं कामयाबी को। तो ये है। तो आपका सफ़र का कोई एक्सपीरियंस, यानी मैं जैसे मैं आपको बता दूँ सफ़र के ताल्लुक से, जो मैं स्टार्ट लेना चाहता था, जब भी आपका सफ़र शुरू होता है तो ज़रूरी नहीं कि आप अकेले सफ़र करें। कई लोगों का सफ़र जो है ना, वो किसी न किसी के साथ होता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो हम सफ़र का इंतखाब इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिसके साथ केमिस्ट्री ना मिलती हो ना, जहन ना मिलता हो, उसके साथ कभी सफ़र नहीं करना चाहिए,
चाहे वो प्लेन का या किसी भी सवारी का सफ़र हो या ज़िंदगी का सफ़र हो।
नहीं, ज़िंदगी का भी सफ़र हो, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर इसमें भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो घर भी चुपता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप जैसे अमीर सुन्नत का मैंने एक दफ़ा सुना था, आप एक बार चंद दफ़ा फरमाया है हज का बयान करते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा साथी था कि उसके होने से मैं काफ़ी तकलीफ़ में था, कोफ्त में था, परेशानी थी उसकी वजह से। तो मैंने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह ये मेरे मेमनी में या अल्लाह मुझसे बिछड़ी उन्हें, यानी या अल्लाह मुझसे जुदा हो जाए। और ऐसा हुआ कि थोड़ी जगह वो मुझसे जुदा हो गया, तो फिर मैं सुकून में आ गया। तो ये होता है कि बाद वक्त आपके साथ कुछ ऐसे लोग सफ़र करते हैं जो आपके सफ़र का जो सारा ज़ौक है, शौक है, मज़ा है, अब वो किरकड़ा हो जाता है और आप उसको संभालने में और उसके मिजाज में ही परेशान हो जाते हैं, नाराज़गियाँ अलग हो रही होती हैं। तो ये मैं ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा कि जब भी सफ़र करना और किसी के साथ सफ़र करना हो, तो ये ज़रूर देखिएगा कि यार इसके साथ सफ़र करने में मैं आजमाइश में तो नहीं आ जाऊँगा, ये ज़रूरी है। ये पहली चीज़ है। शबीर भाई, आप क्या कहते हैं?
पर मैं यार साथ आपकी बात को कंटिन्यू और करूँ कि सफ़र में आपको ऐसा शरीक तो मिल गया, अब उस शरीक सफ़र को भी चाहिए कि जिसके साथ सफ़र कर रहा है ना, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें और अपने आप को मैनेज करें। अगर वो अपनी अपनी मर्जी चलाएगा, अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तो कोई भी एक लीडर होता है सफ़र के अंदर, कोई एक लीड करता है, चाहे वो वालिद साहब हों, चाहे वो पीर मुर्शिद हों, चाहे वो अमीर काफिला हों, मतलब कोई ना कोई एक आदमी लीड करता है। उस लीड करने वालों को फॉलो करना, उसके साथ उसकी इताअत करना, ये भी सफ़र को कामयाब करने का एक ज़रिया बनता है।
एक से ज़्यादा अगर सफ़र करने वाले, उसमें एक अमीर काफिला बना लेना चाहिए ताकि उसकी इताअत का सिलसिला रह सके। ये उमूमन जनरली तौर पर तो आम आवाम में तो ये प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन जब जैसे हम दावत इस्लामी के ज़रिए कहीं भी सफ़र करते हैं, मदनी काफ़िलों के नाम पर करें या तंजीमी सफ़र करें, यानी हर तंजीमी सफ़र मदनी काफिला नहीं है, हर मदनी काफिला तंजीमी सफ़र ज़रूर है। लेकिन हर सफर को मदनी काफिला नहीं कहते, मदनी काफिला दावत इस्लामी की एक मखसूस इस्तिला है जो एक खास जदवल के साथ सफर करने वाले पर बोली जा सकती है, फिर कहेंगे ये जना मदनी काफिला हो गया, तो ये होता है।
लेकिन ऐसा ये कुछ ठीक है, जदवल के मुताबिक मदनी काफिला सफर करेगा, लेकिन अगर मदनी काफिला नहीं है, फैमिली सफर कर रही है, तो भी वो किसी जो अपना बड़ा है ना उसको
बड़ा बना दे,
उसको बड़ा बना दे। अगर चार दोस्त भी जा रहे हैं, चाहे वो किसी टूरिस्ट प्लेस पे ही जा रहे हैं, जायज जगह पे जा रहे हैं, वो भी किसी एक को अपना मतलब
बड़ा बना दे किसको, उम्र के हिसाब से बनाए,
तजर्बे के हिसाब से बनाए।
अब वो जो गया है देखा है उसके हिसाब से उसको
बेनिफिट उनको मिलेंगे। ये देखा गया है अपने जब से सफर कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा अपने अपने बड़ों के साथ पीछे पीछे चले और उस सफर में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी।
आपको ऐसे जिंदगी का एक्सपीरियंस
बहुत सारे सफर है माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो सफर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यादगार सफर,
पर्सनल सफर हुए, बिजनेस सफर हुए, कोई भी ऐसी चीजें का आप कहते हैं इस सफर में अगर ये इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ कि अगर एक लॉस हो गया या परेशान हो गया, अगर यार ये मतलब ऐसा कर लेता तो ये कि मैं परेशान ना हुआ होता।
एक तजर्बे की बात मैं ज़रूर अर्ज करूँगा कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब कहीं भी बाय रोड सफ़र होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान से बाहर हो, बिलखसूस मक्के मदीने का सफ़र हो, और उसमें बाय रोड के सफ़र में ड्राइवर के साथ मैंने अपने आप को बिठाना या किसी ऐसे जिम्मेदार को आगे बिठाएं जो जागने पर जिसको थोड़ी महारत हो, वरना अमूमन मक्के मदीने के सफ़र में ड्राइवर इतनी ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, बाद अवकात वो 24 घंटे चला रहे होते हैं, बाद अवकात वो 18 घंटे चला रहे होते हैं और नींद से उनकी आंखें लाल होती हैं, और अगर ज़रा गफलत होती है ना तो गाड़ी के स्टेयरिंग घूमने में देर नहीं लगती। तो ये एक मेरा ज़ाती तजर्बा है जो मैं शेयर करूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन को भी, कि आप पहली तो कोशिश ये करें कि ऐसा ड्राइवर हो कि जो नींद करके आया हो, और अगर आपको लगता है कि इसने नींद नहीं की हुई और आपको मजबूरन उसके साथ बैठना है तो कम से कम खुद बैठें या कोई ऐसे जिम्मेदार को बिठाएं कि जो उसको जागता रखे। अब उसको जागता रखे, उससे बातचीत करता रहे, उससे कोई गुफ्तगू करता रहे, वो चाय पीता रहे। और अगर ऐसा भी हमारे साथ सफ़र में हुआ कि एक दफ़ा हम अमीर अहले सुन्नत के साथ ही सफ़र में थे, मुझे याद पड़ता है अमीर अहले सुन्नत के साथ थे या सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब के साथ, ड्राइवर इतनी ज़बरदस्त नींद में था कि गाड़ी शायद वो गिरा देती यानी घूम जाती बिल्कुल। आखिरकार हमने उसको रोका एक मस्जिद के पास, हमने उसको कहा कि तुम आराम कर लो, एक दो घंटे उसने आराम किया, पूरा काफिला रुका रहा उसके लिए, जब उसकी नींद थोड़ी पूरी हुई और उसको सेट हुआ फिर दोबारा गाड़ी में आके बैठे और चले। वरना इस तरह की जो गफलत वाले ड्राइवर होते हैं ना उससे हादसा का बड़ा डर रहता है,
कई एक्सीडेंट नींद की वजह से हो जाते हैं। यानी कि इसमें ये हमें पता चला कि जब भी ट्रैवलिंग करनी है तो जिसको ड्राइविंग करनी है ना उसकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अब मतलब कि वो आदमी ड्राइवर लेकर चला है और कराची से लाहौर और लाहौर से उसने आगे का सफ़र करना है और बोला कि मतलब कि अब वो तो गाड़ी में सो जाएगा, ड्राइवर को सोने ही नहीं दे रहा, तो फिर दोनों किसी इसी जगह जाकर सोएंगे कि फिर प्रॉपर सोएंगे ना। ये कई हादसा हमारे हुए, हम मेरे मुझे पता है, और वो हादसा हमारे इस्लामी भाइयों के भी हुए हैं, आमतौर पर भी कई हादसा का पता चला है, और इसकी बुनियादी वजह ड्राइवर क्या आंख लग जाना है, नींद का मामला जो है ना। यानी हम मुझे जब शुरा बनी थी और हम सिंध का दौरा कर रहे थे और कई दिनों का हमारा ये सारा सफ़र था, हम दो तीन गाड़ी चलाने वाले थे, ड्राइविंग पता ड्राइविंग कर लेते थे, मगर इतने थक चुके थे कि अब किसी में भी, हम तीन इस्लामी भाई थे मुझ समेत, हम तीनों में से किसी में भी ये ताकत नहीं थी कि हम अच्छा हम कराची की तरफ आ रहे थे मगर अब हाईवे पर रुक गए, अब चलाएगा कौन। ये दो दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा हम मस्जिद में जाकर सो गए, खैर नहीं मतलब नहीं चलेगी गाड़ी, और एक दफ़ा तो बिल्कुल वो होटल ही होती है ढाबे, मतलब जैसे हाईवे पर जो होटलें होती हैं उस पर चारपाई लगी होती हैं, हम सो गए ना, हमारा एक इस्लाम भाई गाड़ी के ऊपर सो गया और ऐसा सो गया कि जब उठा तो उसका जेब भी कट चुका था, पता ही नहीं चला कि
कौन गाड़ी
से कम कौन क्या लेके चला गया, थकन ऐसी, अरे वो थकन में कैसे गाड़ी चलेगी। तो ये जो है ना थकन और नींद, इसने बहुत सारे एक्सीडेंट कराए।
भाई साहब एक ये इससे एक याद आ गया, कुछ छोटा सा ना। नहीं मैं
साइकिल के
ड्राइविंग,
गधा?
नहीं, गधा भी नहीं, साइकिल भी नहीं,
अच्छा ठीक है,
बस।
ओके बस।
अच्छा, अब ना बस का ये था कि मैं कहीं पहले जॉब करता था, तो वहाँ मैंने मतलब डे नाइट कंटिन्यू वो जॉब की थी ना, तो मैं थक गया था ठीक ठाक। अच्छा, अब मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं था, बस में पैसेंजर सीट पे था। तो इतना थक गया, जाहिर है मैं घर जाऊंगा और फिर सोऊंगा ना, तो मैं बैठ गया और वहां पे थोड़ा इंतजार करता रहा, घर आ जाए घर आ जाए, तो मेरी आंख लग गई। तो वो बस जब चलते चलते आगे चली, तो वो जंप वगैरह खड्डा हो गया, तो गाड़ी उछली। तो मैं मतलब इतनी थकन और इतनी नींद थी, मतलब ये उन लोगों के लिए जो ड्राइविंग करते हैं, अगर वो इस तरह सो गए तो वो खुद भी बाहर और गाड़ी उधर। तो मैं वो पैसेंजर सीट पे पीछे की तरफ था, वो गाड़ी उछली, तो मैं जब गिर उछल के नीचे बैठा हूँ ना, जो सीटों के दरमियान जो जगह होती है, जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा था मैं गाड़ी के अंदर हूँ ना। तो इतनी नींद का गलबा था कि मैं उछलने के बाद, गिरने के बाद फिर थोड़ा सा होश आया, तो पता चला कि आप है ना बस में हो, और नींद ना करने की वजह से मैं अभी बस
बिल्कुल
से
एक
जमी। जी
बेहोशी वाली नींद थी।
जी
आप बताइए आपका कोई एक्सपीरियंस।
जी मैं ये समझता हूं कि अफसोस से एहतियात बेहतर है। आदमी अफसोस करे, बेहतर ये कि आदमी एहतियात करे। तो हमारे बहुत से लोग सफर तो करते हैं, मैं बैरून मुल्क सफर की बात करता हूं, तो जब उनका सफर का होता है तो वो टाइम पे जो है वो नहीं पहुंच पाते। वो कहते हैं 3 घंटे पहले जो है वो हमारी जो है, हमने 3 घंटे पहले पहुंचना है। तो रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तकलीफ दी होती है, कि आदमी अगर घर से निकलता है तो ये सोच के निकलना चाहिए कि मेरी गाड़ी पंचर भी हो सकती है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रैफिक जैम भी हो सकता है, तो वक्त से पहले निकले। और दूसरा ये कि अपने पास जो पासपोर्ट होते हैं, तमाम दस्तावेजात हैं, वो पहले से जो है ना वो संभाल के रखे। वहां जाने के बाद जब वो चेक करता है कि उसका कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा मेरे साथ हो चुका है, कोई दस्तावेजात नहीं है, तो फिर वो जहनी टेंशन में आ जाता है। फिर हमारे बहुत सारे लोग करते ये हैं कि हवाई सफर के दरमियान जब 20 किलो का किसी को इजाजत होती है तो उसमें 25 किलो डाल देते हैं, हैंड कैरी के अंदर 8 किलो की इजाजत है, 10 किलो डाल देते हैं। उसके बाद में जब वो काउंटर पर जाते हैं तो फिर मिन्नतें कर रहे होते हैं कि मेहरबानी करके ऐसा कर लें, और साथ में फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उसमें उनको बड़ी टेंशन होती है। तो सफर के अंदर इन तमाम चीज़ों का अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप जब टिकट ले लेते हो, आपको बोर्डिंग कार्ड मिलता है, वो तमाम चीज़ें जब आप संभालते नहीं और आपके पास फैमिली हो, तो ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है, तो मैं बहुत जहनी टेंशन में आ गया था। तो मैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन से यही कहूँगा कि जब आप इंटरनेशनल सफ़र करें तो वक्त से पहले घर से निकल जाया करें, ये सोचें हम 2 घंटे पहले चले जाएंगे। उसके बाद में एक तो इजी हो जाएगा सफ़र, आपका इजी हो जाएगा। जब आप काउंटर पर जाएंगे तो आप टिकट वगैरह तमाम चीज़ें, आपका बैगेज वगैरह तमाम हो जाएगा, उस पर जाएँ आप VIP लाउंज में जाके आराम से बैठ जाएँ। तो सफ़र के अंदर ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा ये कि जब हम हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं सफ़र के लिए, उसके बाद लोग क्या करते हैं, मोबाइल से जो है वो मना करते हैं कि भाई अब मोबाइल यूज़ ना करो। तो ये मोबाइल भी जो है ना ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम हमारा टेक ऑफ करता है प्लेन, हम तब भी यूज़ कर रहे होते हैं। टेक ऑफ करने के बाद जब हमारा प्लेन उतरता है, तो उतरते वक्त भी हम लोगों को परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं, और उतरने के लिए तो सब इकट्ठे ही उतरेंगे, वो कहते भी हैं कि आप सीट बेल्ट बांध के आप बैठ जाइए और आप उठिए नहीं जब तक आपका जो तैयारा जो है ना वो रुक ना जाए। लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर खुद भी तकलीफ में आते हैं और लोगों को भी तकलीफ देते हैं। तो सफर में इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि हम लोगों को तकलीफ ना दें। अगर हम लोगों को तकलीफ देते हैं तो इसका मतलब है आप समझते हैं ना, हम मदीने के सफर में जा रहे हो या आम सफर में जा रहे हो। तो मैंने दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया है और मैंने ये चीज़ नोट की है। तो मेरी तो मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश यही है कि वो इन चीज़ों को देखें।
ये हर जगह के लिए टाइमिंग का प्रॉब्लम जो आपने बताया ना, उसमें ट्रेन का भी है।
जी।
हमारे साथ अजीब वाकया हो गया। मैं यूरोप के सफर में था और तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे का बाई ट्रेन रास्ता था, शायद ऑस्ट्रिया का होगा या किसी और मुल्क का था, कहीं मुझे ऑस्ट्रिया जाना था आई थिंक। तो हम निकले घर से, ट्रेन का सफर था। अब जो भी वजह थी, या तो घर से लेट निकले या इत्तेफाक था कि जाम, सिग्नल 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 यानी अनएक्सपेक्टेड सिग्नल, तो खुला मिल जाएगा, खुला भी नहीं मिला, लंबा लंबा मिल रहा है, लंबा लंबा मिल रहा है। अब कई मिनट हम लेट होते गए, लेट होते गए, लेट होते गए। तो बाद मुल्क तो होते हैं जिनमें कोई लेट होना मसला ही कोई नहीं होता, आप जल्दी पहुंचते हो, गाड़ी लेट होती है। देखिए यहाँ एक एक मिनट और डेढ़ मिनट की कहानी थी। हमने बाकायदा एक इस्लामी भाई को दौड़ाया, तकरीबन डेढ़ या दो मिनट हमें लगने चाहिए, 9 बजे ट्रेन में डिपार्चर था ट्रेन का 9 बजे का, और शायद हमने 9:02 या 9:03 पर वहाँ पहुँचना था, यानी 9 बजे तक पार्किंग हो जानी थी, और पार्किंग होकर हमने 2 से 3 मिनट लगनी थी ट्रेन तक पहुँचने में। वो हमारा जो इस्लाम भाई था वो बाकायदा ड्राइवर तक चला गया, और तो बातों बातों में लगा लेगा तो 2-3 मिनट निकल जाएंगे। ट्रेन चली गई 9 बजे और उसने पटरी पर चलना शुरू कर दिया। नतीजा ही निकला कि तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे या जो भी था हमने बाय रोड सफ़र किया, और वह मेरा इज्तिमा था, मेरा बयान था, जो भी था, जिस तरह पहुँचे जिस तरह हुआ, तो 4 या 5 मिनट के फ़र्क से जो मतलब के बज़ाहिर परेशानी हुई है, हो सकता है ये परेशानी ना हो और ट्रेन के बजाय गाड़ी का सफ़र हमारे लिए हमारे हक में बेहतर हो, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी थी। मगर ऐसा होता है कि आपके 2-4 मिनट की वजह से जो है ना बहुत ज़बरदस्त आपको नुकसान हो सकता है। आसिफ भाई आपकी भी काफ़ी ट्रेवलिंग है, आप क्या कहते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है?
एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बल मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि दुनिया के किसी भी सफ़र में जाएं, इंटरनेशनल, अपने आप को भूल जाएं, किसी और चीज़ को भूल जाएं, लेकिन अपने पासपोर्ट और अपने पैसों को ना भूलें। यानी चाहे आप अकेले सफ़र कर रहे हों, चाहे बिजनेसमैन के साथ सफ़र कर रहे हों, चाहे आप अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हों, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, पासपोर्ट की हिफाजत और पैसों की हिफाजत, अगर अल्लाह ना करे आपके पास पैसे गिर गए आपसे या आपका पासपोर्ट गुम हो गया, तो आप किसी भी सफ़र पर हो, आपको अपने मुल्क वापस आना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। एम्बेसी से पासपोर्ट दोबारा बनवाना, या किसी ऐसे सेक्टर पे होंगे जहाँ किसी का कनेक्शन नहीं है, पैसे मिलने, यानी भीख पे भी आप मजबूर हो सकते हो, भीख पे भी। बाकी ऐसा सफर
में कुछ कहाँ रखे फिर पासपोर्ट?
नहीं, आप अपने अपने आप को पासपोर्ट अपने साथ इतना हिफाजत से रखें, या अगर आपने कुछ अच्छे होटल्स लिए हुए हैं तो उनके बाकायदा सेफ होते हैं उन होटलों के अंदर। अगर आप किसी के घर पे मेहमान बन के उतरे हुए हैं तो उनके घर में जो सरबरा है उसके हाथ में आप थमा दें कि भाई ये आप रखो, ये मेरा पासपोर्ट।
तो मैं शोल्डर बैग को ज्यादा प्रीफर करता
हूं। बिल्कुल सही कह रहे
हैं, हैंड बैग नहीं,
शोल्डर बैग,
ब्रीफकेस नहीं, शोल्डर बैग
जो अपने साथ हर वक्त।
हाँ, शोल्डर बैग को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं, और शोल्डर बैग को इतना बड़ा नहीं होता, और शोल्डर बैग में आपके जरूरी डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट ही आपके शोल्डर बैग में रह सकते हैं। इवन कि आप अगर टॉयलेट में भी जा रहे हैं तब ये शोल्डर बैग आपके साथ रहेगा, आपके साथ और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं तो शोल्डर बैग आपके साथ रहेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं, बोर्डिंग पास है, सबको पता होना चाहिए कि मेरे
इसी में
शोल्डर बैग में है। मगर इतना ज़रूर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये स्टाइल होता है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक ही के पास रखवा दो, ये एक है,
फैमिली है तो सारे।
हाँ, मगर ये एक अगर मिस हो गए आदमी
तब रुक जाएंगे।
सर, मैं इस पे ये कहूँगा कि आप लेकर घूमने वाली प्रैक्टिस मेरे तजर्बे के हिसाब से ये गलत है। मेरा ये कहता है तजर्बा कि अगर आप होटल में हैं और आपको डर है कि आपका जो ये क्लीनिंग करने वाला बंदा आएगा वो कोई शरारत कर लेगा, सेफ खोल लेगा, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने पासपोर्ट रिसेप्शन पे रखवाएं, पैसे रखवाएं, उसकी रिसिप्ट उनसे ले लें, ये आपका सबसे सेफ साइड है।
अगर तो वहाँ जब होटल में उतर गए,
नहीं देखें ऐसा, आप
एयरपोर्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ।
नहीं, एयरपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जिस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब आप कराची से उड़े, चाहे आप मदीना उतरे, चाहे आप जद्दा उतरे, चाहे आप मलेशिया उतरे, थाईलैंड उतरे, अमेरिका उतरे, कैनेडा उतरे, आप या तो कोई आप किसी के गेस्ट हैं, या आप प्लेजर ट्रिप मारने जा रहे हैं, घूमने फिरने बच्चों के साथ जा रहे हैं, या बिजनेस ट्रिप मार रहे हैं, उन सूरत में या तो आप किसी के घर पे रहेंगे या आप किसी होटल में रहेंगे, दो ही रास्ते हैं ना। तो उन दो रास्तों में सबसे पहले आपकी ट्रैवलिंग के वक्त आपके पास $5,000 हैं, $10,000 हैं पर पर्सन जो भी आपके पास हैं, और अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आप लेकर मत घूमें। अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में गन पॉइंट पे आपसे अगर आपका वो बैग ही छीन लिया गया तो फिर आप क्या करेंगे?
बाहर तो लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी होना जरूरी है ना।
नहीं सर, आइडेंटिटी देखिए आजकल मोबाइल का इतना रिवाज है कि आप अपना वो जो वीजा पासपोर्ट पे होता है उसको आप फोटो पिक्चर ले लें, अपने मोबाइल के साथ सेव कर लें, अपने पासपोर्ट की अपनी तमाम चीजें।
अगर कोई आपसे पूछे, हाँ ये आप बता दें,
और मेरे ये लोकेशन पे मेरा पासपोर्ट है, अगर आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, पुलिस वाले आते हैं बाजू का होटल पे चेक कर लेते। कई जगह ऐसा हुआ है कि कई लोगों को पकड़ा गया है, उनको एतबार नहीं आता, तो वो होटल का पूछ लेते हैं, होटल पे कॉल कर लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये बंदा यहाँ रुका हुआ है, उसको रिकन्फर्मेशन
हो जाती है। भाई पुराम देखने वाला बोलेगा कि यार चलो जब जहाज में जाएंगे तब इनका पुराम देखेंगे, हमको तो अभी उतर के टैक्सी लेनी है, रक्सा लेना है, हमें तो इसमें जाना है, हमने तो अभी बस लेनी है और हमें तो मतलब 100-200 किलोमीटर दूर जाना है, इस ताल्लुक से क्या कहते हैं कोई, आपने भी तो सफ़र तो किए होंगे यहाँ वहाँ, बस गधे और साइकिल के अलावा भी सफ़र तो हुआ होगा ना, बस तो चलो एक दफ़ा सो गए आप, लेकिन हर दफ़ा तो आप सोते नहीं हो गए, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे टैक्सी गाड़ी बस वेगन में जो हमारे सफ़र होते हैं, और आई थिंक ये शायद ये सफ़र बहुत ज़्यादा है, जहाज़ में सफ़र करने के मुकाबले में ये सफ़र करने वाले ज़्यादा हैं, और दुनिया के कई मुल्कों में जितना ट्रेन में सफ़र है इतना तो किसी में भी सफ़र नहीं है, अब तो ट्रेन ही इतनी ऑटोमेशन पर चली गई है कि टैक्सी में भी सफ़र कम हो गया, कि वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जैसे कि इंडिया है, इंडिया में लोकल ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में लोकल ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा है, और भी दुनिया के और बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें ट्रेन का, आप लंदन देखें, यूरोप देखें, ट्रेन में सफ़र बहुत ज़्यादा है,
ट्रेन का ट्रेंड चल पड़ा है।
अच्छा ये क्या है कि एक तो ये कि एक ये भी एक तरह से सेफ जर्नी है, जहाज़ के मुकाबले में ये कम सेफ है, लेकिन फिर भी कदरे सेफ है और जल्दी पहुंचा देती है।
ये क्या मतलब भाई साहब जी का,
कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं?
जहाज के मुकाबले
जहाज के जितने हादसे हैं ना, इससे ज्यादा हादसे ट्रेन के पाए जाते हैं।
आपके ख्याल में जहाज ज्यादा
सेफ, सबसे
सेफेस्ट
जहाज
जो है ना, वो सबसे ज्यादा महफूज और सवारी है वो जहाज की है, क्योंकि इसका हादसा होता कम है, मगर जब भी होता है फाइनल होता है।
बिल्कुल,
तो इसमें तो बचने के चांसेस है ना ट्रेन में, इसमें तो
जहाज में
नहीं। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि वो यदि सेफिस इन इस सेंस में कहा जाता है, एक वक्त में अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इस वक्त भी हजारों जहाज इस वक्त हवा में होंगे।
15 लाख के करीब आदमी हर टाइम हवा में होता है, 15 लाख एक अंदाजे के मुताबिक
हजारों जहाज होते हैं, और एक मिसा का तो भाई 1000 फीट का फासला, 2000 फीट का फासला, 5000 फीट का फासला, ये जहाज़ों का आपस में होता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा जब जहाज आपका कहीं लैंड कर रहा होता है तो काफ़ी नीचे आ चुका होता है, तो आपको अपनी विंडो से कोई जहाज़ नज़र आ रहा होता है, या वो जहाज़ उस तरफ आपको नज़र आ रहा होता है, या कोई बहुत बिल्कुल ऊपर भी होते हैं ना,
एयर भी ऊपर,
बाज़ औक़ात जैसे बादल इतने वहाँ पर खुला हुआ था
होता है
या आपको मतलब कि नज़र आ रहा है, तो इनकी ये पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम है, एयर ट्रैफिक सिस्टम ATC इसको कहते हैं, एयर ट्रैफिक सिस्टम है, ATC आपको अलाउ करती है मूव करने के लिए, और फिर आप कितनी ऊपर हैं, आप मतलब कि अपने एयर ट्रैफिक सिस्टम से ATC से आप कंट्रोल पूरा सिस्टम होता है, यानी पायलट जो है ना वो अपने कंट्रोल एरिया से वो उसे वो बात कर रहा होता है, तो वो पूरी एक फिर इसकी कोर आप देखें ना, जितना आप लाइसेंस जिस तरह यहाँ मिल जाता है जहाज उड़ाने पायलट को, तो नहीं ना ऐसा लाइसेंस मिलता, और वो एक उसकी बाकायदा ट्रेवलिंग हिस्ट्री होती है, डोमेस्टिक से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ जाता है, और फिर जहाज़ की एक अपनी मेंटेनेंस होती है, ये अंडरग्राउंड कर दिए जाते हैं जहाज़ के, जनाब ये नॉट फिट टू
फ्लाई,
तो ये होता है, तो ये पूरा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, और इसमें मतलब बहुत इसलिए सेफिस्ट के तौर पर लिया जाता है, लेकिन सर इंजन का ख़राब हो जाना या ऊपर ही कोई ऐसा मतलब कि मौसम का तब्दील हो जाना जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि रोजाना कितने जहाज फटते हैं,
बहुत कम रश,
महीनों में कितने जहाज के हादसा आप सुनते हैं, पूरे साल में कितने जहाज के हादसा हम सुन लेते हैं, और उसके मुकाबले में आपको ट्रेन एक्सीडेंट ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू एयरक्राफ्ट। अच्छा, ट्रेन से ज्यादा हादसा आपको बसों के, कार के ये ज्यादा मिलेंगे, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ये ज्यादा मिलेंगे, आपको शिप के हादसे कम मिलेंगे, बाई शिप, लेकिन बाई शिप का बाई सी का सफ़र ही कोई नहीं है, बहुत कम रहेगा सफ़र, अब मतलब अब थोड़ा बहुत ट्रेन चेंज हो रहा है जर्नी के नाम पर, लेकिन एज सच समंदरी सफ़र जो है ना ये कम है इस तरह, तो ये मतलब मेरा कहने का मकसद है, तो ये जो सफ़र हो रहे होते हैं, अगर आप टैक्सी करा रहे हैं तो टैक्सी में बैठे हैं, तो टैक्सी में भी बैठने वाले आदमी अपना सामान भूल जाता है, अपनी चीज़ें भूल जाता है, रक्षे में बैठा है तो वो अपना सामान भूल जाता है, चीज़ें भूल जाता है, तो ऐसी सूरत में मैं ये सोच रहा था कि हम कुछ ऐसी डिस्कशन करें कि जिसको टैक्सी करानी है, जिसको रक्षा कराना है, या किसी ने बस लेनी है, तो क्या आप ऐसी बस लेते कि जो जल्दी पहुंचा दे? कहां पहुंचा दे ये बात की बात है, लेकिन पहुंचाए जल्दी। तो इसके बारे में मैं चाह रहा था कि कुछ अपनी एक्सपीरियंस अगर आपको हो तो शेयर करें। आपका भी रोज़ाना आना जाना, तो अपनी गाड़ी में वादे सफ़र करता है, ज़रूरत थोड़ी कि कोई रेंट पर जाएगा। आपकी अपनी कार है, अपनी मोटरसाइकिल है, जर्नी तो जर्नी है ना।
जी जी,
आपने खुद ही कहा कि एक जगह दूसरी जगह जाता आता है,
सफर किसमें भी जाए आप जो।
हाँ मैं अब कुछ बोला?
अच्छा नहीं, दो मरतबा बोला ना, मैंने कहा तीसरी बार भी बोला।
आप बोल लो, कोई हालत नहीं, तीसरी दफा में
हमारी तो
मेरे को हैट्रिक होना जरूरी थोड़ी है।
हाँ मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, बड़ी सेफ चलाता हूँ, सीधी सीधी चलाता
हूँ, माशाल्लाह,
कटवट नहीं मारता।
नहीं आप सीधे चलाते, मगर सड़क सीधी नहीं चलाने
देते। जी ये भी है, लेकिन ना अपने माशरे में मतलब अगर सफर के लिहाज से देखें, मोटरसाइकिल लोगों को अवेयरनेस देनी हो तो है ना, मैंने तो कई वो सीन देखे, वो बुरका आ जाना चेन में,
फंस जाता है।
आप सीधे जा रहे हैं, दूसरा वो व्हीलिंग मारते हुए आया, उसने वो उसका बेचारा सीधा जा रहा था, उसके ऊपर आ गया, अब वो भी गया, ये भी गया। अब मतलब है ना, मकसद क्या है आपका, बाइक का या कार का, बस का, आपका मकसद क्या है? मंजिल मकसूद तक पहुंचना ना, सेफ पहुंचना। अब ये पता नहीं क्या कौन से दिमाग के लोग हैं, मतलब जाहिर है अभी तो मैं ज्यादातर पाकिस्तान में ही रहता हूँ, तो पाकिस्तान में ये समझाएं, मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा इनको।
नहीं नहीं समझा, उर्दू बोलो सही आएगा।
तो लेकिन आपकी बात तो है ना,
कौमी जबान है,
वो असर रखती है ना।
मैं तो देखता हूँ ना, जो आप यहाँ बयान कर रहे हैं, चेन नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मेंटेनेंस, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई एम वेरी मच पाकिस्तानी। मगर वो एक दिन सलमान भाई के साथ ही प्रोग्राम कर रहा था मैं 14 अगस्त का, तो सलमान भाई ने काफ़ी पाकिस्तान का ऑपरेशन किया था। मैंने सलमान भाई सुबह के, सलमान भाई पाकिस्तान के बाहर कहाँ कहाँ गए हो? तो कोई खास मुल्कों में ये गए नहीं थे। मैंने कहा फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो कहीं गए ही नहीं हो तो फिर मेरे मुल्क को कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं अभी यूके के एक शहर में गया था, बारिश थी, तो जब गाड़ी से उतरा तो नीचे देखा तो मैंने कहा खाली मेरे मुल्क का मसला नहीं है, ठीक है, तो और भी कई मुल्क देखे, गाड़ियों का ठिकाना नहीं, रक्शे टैक्सी बिल्कुल, आप बैठो तो बोले कहाँ बैठ गए यार। यानी यकीन माने बाद मुल्क ऐसे हैं जहाँ हम जाते तो हमारे मुल्क की हमें रियली कदर होती है। घड़े तो बोलो, अपने क्या घड़े होंगे जो वहाँ घड़े हैं? अपने पास अगर मतलब के आधा दर्जन है तो वहाँ फुल दर्जन है। तो जो यहाँ प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, दुनिया के तकरीबन 190 से ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं। जी मैं ऐसे ही पाकिस्तान की मोहब्बत में बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की मोहब्बत में बात कर रहा हूँ। जिस तरह एक ख़ानदान में एक अमीर है, एक गरीब है और एक मिडिल क्लास है, राइट, ये ख़ानदान होता है। दुनिया इसी में तकसीम है, अमीर मुल्क है, दरमियाना मुल्क है और गरीब मुल्क है। अब मेरे मुल्क वाला जब भी अपने मुल्क को कंपेयर करता है ना, अमीर मुल्क से कर रहा होता है। चलो अमीर किसी वजह से, तो खानदान में तो अमीर किसी वजह से अमीर बना ना भैया, जमीन खोद कर तो खजाना निकाला नहीं था, उसकी जो भी वजूहत है, मैं अभी ये अलग टॉपिक बन जाएगा। लेकिन जब भी आपने अपनी मिडिल क्लास होने को अपने लोअर क्लास फैमिली से कंपेयर किया तो आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं। पाकिस्तान मैं नहीं कहता कि तो बिल्कुल गरीब भी नहीं है, एक मिडिल में आ जाता, और अब मिडिल से चलो पीछे ले लें, ये ले लें, तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में देखें, एक कंपैरिजन ना करें भाई, फला कंपैरिजन, फला फला एक ना करें, ओवरऑल बात करें तो आपको आपके मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कई मुल्कों में नहीं है, नामो निशान नहीं है। हम तो देख कर आए ना, अफ्रीका में इतना घुमाऊँ, आप कहाँ का अफ्रीका नहीं गए? आपको लगता है यार अफ्रीका में जंगल में आ गए,
बहुत बेहतर।
जब हम पाकिस्तान लैंड करते तो लगता है कि कोई मतलब के कोई
में आ गए,
हम तो रौनक वाले मुल्क में आ गए यार। अब यहाँ से किसी और मुझे अमीर मुल्क में लैंड करोगे तो आप बोलोगे यार, तो ये तकसीम है। तो अपने मुल्क को खुशहाल करना ये बेहतर है। लेकिन आप चेन की बात कर रहे थे, मोटरसाइकिल में चेन खबर नहीं था,
ठीक है, एक अब
आप चादर फंस गई, क्या फंस गई?
हाँ मतलब लेडीज की चादरें वगैरह फंस जाती हैं, ठीक है ना। अब सफर में इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए,
तो हम जैसे को सफर में ख्याल रखना है ना।
जी जी,
अब मैंने तो कई दफा कहा इस्लामी बहनों को, आज भी कह देता हूँ, मोटरसाइकिल में चेन कवर नहीं है, मना कर दो, मैं नहीं
बैठूंगी,
इस पर रक्षे का बोझ डाल दो, आप मना कर दो, मैं नहीं बैठूंगी। मैं अपनी इस्लामी बहनों को बिल्कुल कह रहा हूँ, आप मना कर दो, मैं नहीं बैठ, आप चेन कवर लगाएं फिर मैं बैठूंगी।
एक बच्चा आगे एक गोद में, और उसमें अगर वो एक्सीडेंट होते हैं भाई साहब, देखा है ना वो बच्चों को जिस तरह जख्मी होना, इतना मतलब क्या
ये मेरी
देखने
इस्लामी
वाला
बहन
मतलब।
है, देखो ये नहीं लगा रहा, इसको लगाना नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद, हादसे के बाद जितना खर्चा होगा ना, इससे ही पूरी मोटरसाइकिल खरीद लेगा ये, मगर ये चेन कवर नहीं लगा रहा है। मेरी इस्लामी बहनें अगर इस मामले में सीरियस हो जाए ना, ना बैठे, मैं नहीं बैठूंगी। दुपट्टा फंसता है, चादर फंसती है, बुरका फंसता है, फंदा लग जाता है, गिर जाती है। अच्छा आप इस्लामी भाई जब चादरें ओढ़ते हैं ना सर्दी में, वो भी फंस जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा
चोर बोलेगा कि ना 50-100 रुपए में यहाँ से मैं तेरे को सदर लेके जाऊंगा, वापस लेकर आऊंगा, अभी रक्षा कराऊंगा, 500 रुपए लगाएंगे, महंगाई का दौर है। तो फिर वो बेचारे कहीं कहीं
लड़ाई
मजबूर भी होते हैं,
थोड़ी कर लड़ाई
हालात
की
भी।
बात नहीं है, लेकिन शहजाद भाई जो हादसा हो रहा है ना,
ये तो
सीरियस
जिंदगी
है।
का मसला है।
एक अर्ज है मेरी, मेरी मदनी चैनल के जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जो ये मोटरसाइकिल चलाते हैं, एहतियात इनको ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हेलमेट का जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर गिरते हैं तो सबसे पहले चोट जो है ना वो सर पे लगती है, जिसकी वजह से आदमी की मौत जो है ना वाकई हो जाती है। दूसरी बात ये कि वो हम एक दूसरे को देख के सिग्नल जो तोड़ के जाते हैं, अगर कोई उसे कहे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो कहते वो भी तो कर रहा है। तो हमें ये तमाम चीज़ें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ट्रैफिक कानून की जो है ना वो पाबंदी करनी चाहिए, इससे बेहतर ये होगा कि हमारा माशरा जो है ना वो सुधर जाएगा।
सिग्नल तो
और
नहीं तोड़ना चाहिए।
हाँ, हमारा माशरा सुधर जाएगा, हमें पता चलेगा कि कानून क्या है। और ये हेलमेट वाले मामला में हेलमेट जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। वो तो आप खवातीन का बता रहे हैं कि वो चेन में जो है वो दुपट्टा फंस गया या बुरका फंस गया या
हाँ,
चादर फंस
हेलमेट के
गया।
बगैर तो नहीं मोटरसाइकिल चलानी
हाँ,
चाहिए,
तो
दुरुस्त
हेलमेट के
कह
बगैर जो है ना वो मोटरसाइकिल
हम तो
चलाना।
यहाँ तक कहते हैं भाई इमामा शरीफ आप थैली में डालें और हेलमेट पहने।
हमारे इस्लामी भाई जो है ना वो तकरीबन कानून की जो है ना वो पासदारी करते हैं।
अमीर सुन्नत ने काफी इस मामले में
जी,
हमारी तरबियत की है,
बस बस
सिग्नल ना तोड़े।
जी, और वो मैं कई इस्लामी भाइयों को देखता हूँ कि वो जो है ना वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हैं, और तमाम अगर कोई पुलिस वाला रोकता भी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि मदनी चैनल के जो हमें देख रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि वो इस बात का वो अपने बच्चों को कहें, छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं, छोटे बच्चे जो है वो गली कूचों के अंदर बूम 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 करके मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो अब उनके वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें।
कार वालों को क्या एहतियात करनी चाहिए जो अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं आगे पीछे?
सर मैं तो कार वाले हो गए, ट्रक वाले हो गए या मोटरसाइकिल वाले हो गए, हेलमेट तो अपनी जगह जरूरी है। अगर आप इस वैसे एक तरबूज को यूं जमीन पे फेंकें तो तरबूज फटेगा, अगर उसी तरबूज को आप हेलमेट के अंदर डाल के उसी हेलमेट को उल्टा फेंके तो तरबूज बच जाता है। ये आप ट्राई कर लीजिएगा, तो ये हमारा तरबूज है, इसी को तो बचाना है, इसी को बचाना है ना। और मैं हेलमेट के साथ एक तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते 100 रुपए का खर्चा कर लो, अपनी जिंदगी बचा लो। और वो 100 रुपए का खर्चा ये सब क्या है पता है? एक मोटरसाइकिल का पीछे का बल्ब और एक आपकी हेडलाइट का बल्ब,
जरूर करो।
ये लोग लगाते नहीं है। मेरी अपनी मैं तो कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर ही चलाए, बाज़ औक़ात एक हेबला गुजर जाता है आपके बराबर से, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आया कौन था, अंधेरी गली, काला शलवार कमीज, ना आगे की लाइट ना पीछे की लाइट, मोटरसाइकिल घूम करके निकल रहा है वो। अब नहीं समझ आती। अच्छा फिर अगर वो आगे भी जा रहा है और कोई गाड़ी वाला मस्त होके चला रहा है, या एक कर्व आ जाता है और कर्व में गाड़ी को बाजू का तेज गाड़ी, बलोच पुल की बात कर रहा हूँ, शारे फैसल का कर्व ऐसे है कि आप जब कर्व करते हो ना तो आगे फौरन इमीडिएट क्या चीज आती है आपको नहीं पता, बगैर पीछे की लाइट और बगैर आगे की लाइट के मोटरसाइकिल वाले चलते हैं और वो हिट हो जाते हैं। अब बताएं आप, हेलमेट तो शायद हो सकता है 2-3 हज़ार रुपए का होगा, 4 हज़ार का होगा, बल्ब तो 100 रुपए का मिल जाएगा, बल्ब तो लगाने।
आप कार वाले हैं, मोटरसाइकिल
नहीं सर। मैं देखे मैं कार वाला हूँ ना, तो कईयों कई बचे हैं मुझसे।
अब क्या कहना चाह रहे हैं?
नहीं आसिफ भाई, असल में कार वाले हैं ना, तो वो जाहिर है कार मोटरसाइकिल वाले को थोड़ा सा है ना वो कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, अब ना कार वालों का भी तो सुने ना जरा सा। मैं आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन आपने कार वालों का कहा कि मोटरसाइकिल वाले,
डायरेक्ट आपको थोड़ी बोल रहा है।
जी जी, लेकिन मैं
दिल अब, पे, अच्छा दिल पे ले
मैं बल की बात कर रहा हूँ सर।
एक आपने शेर सुना होगा, सॉरी टू से
जी जी
के ना, वो आपने शेर सुना होगा कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिज का जहाँ और है शाही का जहाँ और। और अगर इसको इस तरह कहें कि सफर है दोनों का इसी एक सड़क पर, ठीक है ना, कार वाले की का सफर कार
वाले
का सफर और। तो अबे ना ऐसा भी होता है, मोटरसाइकिल अगर बारिश का मौसम ले लें या नॉर्मल कहीं पानी पानी खड़ा हुआ है, अब है ना मोटरसाइकिल वाला नॉर्मल जा रहा होता है, कार वाला है तो फिर कार वाला होता है ना, तो उसने जब अपने स्पीड या नॉर्मली से हल्का भी करेगा कितना करेगा, और वो जो है ना उसको मुझे भी निलाया है ना, यहाँ से कार वाला गया और सारा पानी इधर, ठीक है ना। आपका सफर तो बिल्कुल सेफ है क्योंकि आप तो बिल्कुल पैक है ना, एसी के मजे ले रहे हैं और शीशे वगैरह। एक बेचारा वो जो हेलमेट बना यानी नए कपड़े पहन के जा रहा है पुनः, उसको बिल्कुल निला दिया आपने बारिश से, गटर का पानी से निलाया या पाक पानी से निलाया वो बात का मसला है। अब वो अगर फैजान मदीना आ रहा है, अब उसके ऊपर गटर का पानी उड़ा दिया कार वाले ने, तो वो मतलब आपने अपना सफर तो बहुत अच्छा कर लिया,
आपकी बात
ड्राइवर सेफ जर्नी वहां से घर से भी बोल दिया दूसरे की जर्नी के जो।
मैं आपको छोटा सा जवाब, ये बात इस बात से रिलेवेंट नहीं है, वो इसलिए कि देखें मैं इस वक्त जो बात हमारी हो रही थी कि सफर के दौरान वो कौन सी चीजें हैं जिनसे इंसानी जान बच सके, ये जो आपने बात की ना ये अखलाकियात पे बात है, चाहे वो अब वो कार का शीशा खुला हुआ हो और मोटरसाइकिल वाला पानी उड़ा के उसके शीशे के अंदर डाल दे कि अंदर अंदर ही बंदा बैठा हुआ पूरा बाल्टी आ गया, ये भी देखा है मैंने, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और जो आपने बात की कि मोटरसाइकिल वाले ने कार वाले को नापाक कर दिया या बारिश में, वो एक अखलाकियात के मैटर है, दोनों को केयर करनी चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर जो हादसात, हमारा टॉपिक सफर है, तो इस टॉपिक को लेकर अगर ये कहें ना, तो कराची के अंदर अगर मेरे ख्याल में कोई 10 लाख या 20 लाख मोटरसाइकिलें होंगी ना, आप एक सर्वे तो करें, आपको 70% लाइटों पीछे की लाइटें खराब मिलेंगी लोगों की, 70%। और वो बेचारे, मैं कहता हूँ आप जैसा भी ड्राइवर जो मोहतात, और रही बात गाड़ी वाला नहीं भाई, मैं भी आपकी तरह जो आपने शुरू में वो गधे और घोड़े की और मिसालें दी ना, हम भी जोड़िया बाजार से हमारे भी सफर का आगाज हुआ है और ये सारी चीजें बाकायदा चलाई हुई है, मोटरसाइकिल भी चलाई है, साइकिलें भी चलाई है, गाड़ी भी चलाई है। उस वक्त भी हम ये एहतियात करते थे क्योंकि मेरा ताल्लुक सऊदी अरब में 38 साल से रहा है, ठीक है, तो मैं दुनिया भी घूमता हूँ और हादसात की वजह भी नजर आती है। तो जब मेरे हाथ से लोग बचते, कितने अल्लाह ने बचा लिए, और कई एक आध दफा कोई ड्राइवर से भी हिट हो गया सिर्फ ये अंधेरे की वजह से। हमारा कराची अब रोशन कराची नहीं है, हर जगह लोड शेडिंग होती रहती है, अंधेरी रोडे होती है, नहीं समझ आ रही थी मोटरसाइकिल वाले, ये वो एक मोटरसाइकिल वाला है जो पूरी एक फैमिली को पाल रहा होता है, ठीक है। अल्लाह ना करे, वही भाई साहब ने क्या बात कही कि बाज औकात वो चेन का कवर नहीं लगाते लेकिन उससे ज्यादा एक्सीडेंट में अपनी बीवी या बहन या बच्ची पे खर्च कर देंगे, वो तो 500 रुपए का कवर लगा लेना भाई, तू बाद में 50,000 रुपए उतर जाएगा तो फिर पैसा लाएगा कहाँ से, मतलब पॉइंट ये है सर।
बात दरअसल ये कि हम ब्लेम देते हैं कार वालों को, हम ब्लेम देते हैं मोटरसाइकिल वालों को। देखें अर्ज ये है कि मैं मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ और मैं कार भी चलाता हूँ, जब मैं कार चला रहा होता हूँ तो मैं मोटरसाइकिल वालों को देखता हूँ कि वो किस तरीके से देख करके जा रहे होते हैं, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा होता है, और जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा होता हूँ तो मैं हरकत वही करता हूँ जो दूसरे मोटरसाइकिल वाले करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें अपनी सबसे पहले इस्लाह करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ब्लेम दे रहे हैं। अच्छा फिर अगर किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ कोई हादसा किसी कार वाले ने कर दिया तो वो उसे जानता या ना जानता हो कार वाले की शामत आ गई, वो कार वाले को नहीं छोड़ेंगे कि तू इसके पैसे दे या उसे कूटेंगे।
भाग भी जाते तो हैं कार वाला,
नहीं नहीं
कभी कभी एक्सीडेंट कर
गए मोटरसाइकिल वाले को, अभी तो तंग क्यों कर दो, हमारे तो एक मोटरसाइकिल वाला
नहीं, मैं भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ हाजी साहब, मैंने क्या अर्ज की कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मैं कार भी चलाता हूँ।
मगर ये तो है ना कि तुम अभी बैठो मोटरसाइकिल बैठो तो तुम्हें पता चले कि मोटरसाइकिल कैसे मोटरसाइकिल, आप कहिए कुछ तरह के जज्बात आए,
हम चलाते हैं
कार में बैठे हो शीशे चढ़ाकर एसी चलाकर,
लेकिन मैं तो दोनों तजर्बे हासिल करता हूं।
अब्दुल्ला भाई मैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक्स हम पढ़ते थे, उस वक्त हमारे सर ने हमको एक स्टोरी सुनाई थी, मोटिवेशन थी कि आप आगे बढ़ने का कैसे सोच सकते हैं। तो उन्होंने एक मुल्क की एग्जाम्पल दी कि एक शख्स सड़क पर धूप में जा रहा है और उसके साथ एक जोरदार ब्रांड न्यू लग्जरी कार जूम करती हुई गुजर जाती है, थोड़ा वक्त हिलता भी यही है, धूप तो थी ना, देखता है तो एक दिन मैं भी इसी तरह कार में बैठ के जाऊंगा। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दी कि वही कार आगे जाकर एक और शख्स को इसी तरह जूम करके निकलती है, वो आदमी देखता है मेरी तरह धूप में चले तो पता चले धूप में चलना क्या होता है। तो हमारे सर हमें मोटिवेट कर रहे थे कि वो पहला आदमी है ना, वो उसको पीछे लाने के बजाय खुद को आगे ले जाने पर सोच रहा था, वो तो दूसरा आदमी है ना वो कहता तू भी मेरे पास आया उधर क्या है। अगर आपने तरक्की करनी है तो अपनी सोच को पॉजिटिव करें,
पॉजिटिव करना चाहिए
तब आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप भी धूप में चलो दूसरे को भी धूप में चलाना पड़ेगा।
तो ये होता है, तो पानी कौन किस पर गिरा था, इन्होंने भी कहा कि गाड़ी के शीशे नीचे होते तो मोटरसाइकिल वाला भी खड्डे में मार कर निकल तो जाता है।
कुछ मसाले दी जा रही थी ना, कुछ एक्सपीरियंस शेयर,
तो मोटरसाइकिल वाला
इसीलिए गई है।
वैसे कार वाले ने मोटरसाइकिल वाले को ज्यादा मारा या मोटरसाइकिल ने कार को स्क्रेच ज्यादा मारा है?
हाँ, अगर मोटरसाइकिल वाला कार को
सिग्नल पर तकरीबन मोटरसाइकिल वाले
ना
कार का कुछ ना कुछ लाइन वाइन शाइन मार के निकल जाते
हैं। वो खुद भी ये कहते हैं कि यार ये पैसे जो है ना इसके आराम के पैसे होंगे, वो खाम मखा का जो है ना वो खड़ी हुई कार के ऊपर भी जो है ना वो डेंट मार देते हैं या स्क्रैच मार के चलते,
खौफ ही नहीं आता।
हाँ
अजी शब्बीर, नया नया दाऊद इस्लामी में आया था, गुलजार अभी मस्जिद के सामने मेरा घर था यासीन स्क्वायर में, मैं अभी नया ही था, साल डेढ़ साल हुआ होगा मुझे, मगर अब उस जगह की जिम्मेदारी मुझे मिल चुकी थी, डेढ़ दो साल में जिम्मेदारी मिल चुकी थी, ज़ेली निगरान जिसको आप कह दें। तमीर सुन्नत गुलजार अरबी के उस तरफ रहते थे किताब घर में, मैं गुलजार अरबी के इस तरफ रहता था यासीन स्क्वायर में, हम दोनों घर के बीच में जो थी वो मस्जिद थी गुलजार अरबी मस्जिद। एक दिन मैं नीचे उतरा था तो मुझे घर वालों को लेकर जाता था मोटरसाइकिल पर, मेरे पास मोटरसाइकिल थी 70। तो अच्छा जैसे ही मैं जाने लगा तो एक इस्लाम आया कि आपको अमीर सुन्नत याद कर रहे हैं, बस पहली बार ऐसा मतलब वाह साहब ने याद किया। तो मैंने बारवा आप रुको मैं आता हूँ, मैं मोटरसाइकिल लेकर गया, तो अब मुझे इतना ज़्यादा अमीर सुन्नत बहुत क्लोजली नहीं जानते थे, तो बातचीत थी यार एक मसला हो गया, अब मसला सुने आप। तो अमीर सुन्नत ने मुझे इरशाद फरमाया कि हम जैसे के जा रहे होंगे आप, तो गुलजार अरबी मस्जिद को जैसे क्रॉस किया ना तो आपने फरमाया हमारी गाड़ी पंचर हो गई, तो हमारे इस्लाम भाई ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ना, तो मैंने नोट किया, अमीर सुन्नत मुझे कह रहे थे, मैंने नोट किया कि गाड़ी जो हमारा दरवाज़ा किसी की कार को लगा और उस कार पर एक हल्का सा निशान हो गया। अच्छा अब उस कार वाले को तो इतना ना पता चले कि निशान हो गया, मेरे रब को पता है किसी कार पर निशान हो गया, अब मैं नहीं जानता कौन, हम इस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अब ये यहाँ पार्क हुई हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रहते यहीं कहीं होंगे, अगर आप इनसे बात कर लो और इनसे वो या तो माफ करवा दें या फिर हमसे इसके जो भी
चार्जेस हैं ले लें,
चार्जेस हैं खर्चा वो हमारा ले लें। अब मैं देख ही रहा हूँ नवो नवो हुए नया नया था, देख ही रहा हूँ कि ये भी होना है तो ये भी होना चाहिए। तो खैर वो सारा प्रोसीजर फिर हो गया, तो ये जो आप जैसे कह रहे थे ना कि ये स्क्रैच लगा देते हैं वो करते ही है मोटरसाइकिल वाले कार वाले, सिर्फ तरबियत की कमी, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है, तरबियत की कमी है। अगर हमारी तरबियत होगी हमारे घर में हमारे फैमिली में हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हमारी तरबियत का सिलसिला होगा तो इंशाल्लाह हमारी, अब जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारी तरबियत में जो कमी है वो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, कि आपकी जो भी गाड़ी है हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है ही कोई नहीं, बाहर ऐसा नहीं है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हमारा चल रहा होता है, आप देखिए रक्षा करवाते हैं और रक्षा आपको पता है कि सीएनजी पर है तो आप बोलते हैं सीएनजी वाला सस्ता लेगा, आपको पता ही है सीएनजी सस्ती लगाई है महंगी लगाई है, इसके साथ साथ आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे होते हैं मदरसे में जा रहे हो जिस ट्रांसपोर्ट में आपके बच्चे जा रहे होते हैं, कभी आपने उस ट्रांसपोर्ट का मेंटेनेंस मालूम किया है? कभी आपने देखा है कि उसके टायर घिसे हुए हैं, हल्का सा कोई मतलब छोटी सी पिन जो है ना वो टायर पंचर कर देती है, एक नुकसान हमारे बच्चों का या हमारी जान का होता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी केयर करें जब भी घर से निकलें, अगर कोई लंबी जर्नी है जैसे मैं अभी कराची में बैठा हूँ, कराची से अगर हैदराबाद जाना है हैदराबाद तकरीबन 2-2.25 घंटे का ऑलमोस्ट सफ़र है, तो अब हैदराबाद जाना है तो पेट्रोल चेक करना है, ऑयल चेक करना है, ब्रेक शू चेक करने हैं, आपको अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर स्पेयर व्हील चेक करना है, आपको बाकायदा जैक चेक करना है, जैक तो अब जैक चढ़ा तो जैक चढ़े ही नहीं, इसकी तो कमानी टूटी हुई है, जैक को ही जैक की ज़रूरत है, तो करेंगे क्या? अच्छा वो टायर भी है सब कुछ है तो वो टायर खोलने के लिए आपका वो पाना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास। गाड़ी चलाएं तो लाइट या तो है नहीं, या अच्छा ये जैसे अभी आसिफ भाई ने कहा कि मोटरसाइकिल वाले लाइट नहीं, तो कई कार वाले हैं जिनकी एक लाइट जलती है दूसरी लाइट नहीं जलती, उसकी कार ही कारनी है,
दूर से पता ही नहीं चल रहा होता कार आ रही है मोटरसाइकिल आ रही है,
ये इतना बड़ा रिस्क है, ये तो जहाँ लाइट नहीं है वो तो ठोकी देती है।
तो अब ये कि कार वाले भी लाइट नहीं लगाते, कितना खुश हो गया सदा
हुआ है। मोटरसाइकिल वालों की
कार और मोटरसाइकिल से थोड़ा आगे बढ़े, बड़ी गाड़ी की तरफ आए, जैसे हमारे पाकिस्तान में
ट्रक है, बस है,
वैन है, वैन चलती है, बड़ी वैन चलती है और बसें चलती हैं, बड़ी ओवरलोड चलती हैं, या तो गेट लोग गेटों तक लटके होते हैं बाज़ोकात ऊपर छतों पे चढ़ जाते हैं।
कौन किसी ने मार्केट चलाया था शब्बीर भाई? नहीं नहीं, आप स्टॉप पे खड़े,
लेकिन क्या करें,
वेगन आई है,
नंबर आएगा ही नहीं, अगर आप मजीद इंतजार करेंगे तो फिर आधा घंटा
आप ना बैठे ना ट्रांसपोर्ट
नौकरी चली जाएगी अगर नहीं बैठेंगे।
नहीं नहीं, आप स्टॉप पे खड़े, कंडक्टर उतरता है, उसके हाथ में चाबुक होता है और बोलता चढ़ो छत के ऊपर वरना तुमको मारूंगा।
अगर ऑफिस लेट पहुंचूंगा तो मेरी वहां लेट लग जाएगी,
जल्दी निकले कुछ करें। यानी आप लेट पहुंचेंगे और ऊपर बैठ के कहां पहुंचेंगे?
ऊपर से ऊपर ही
पहुंच जाएंगे,
ऊपर नहीं कब्र में पहुंचे, नीचे कब्र।
अच्छा,
ऊपर कहां?
सॉरी,
तो ये मतलब कहां पहुंचे?
थोड़ी तो परमिशन देना कुछ ऐसा कुछ।
नहीं नहीं, कैसे परमिशन
दे सकते,
कैसे परमिशन दे, लटक के जाने की परमिशन कैसे दे दे, गेट पर लटकने की परमिशन कैसे दे दे, ऊपर छत पर मतलब के लगेज की तरह बैठने की परमिशन कैसे दे दें आप, मतलब के आपको कितना नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, इसी सूरत हाल में आप इंटीरियर का ट्रेवल कर रहे होते हो, आप 8-8 घंटे का ट्रेवल कर रहे होते हो और समझ ही नहीं आती कि बैठे क्यों हुई है, ना बैठे, मैं आपको बता रहा ना बैठे, मुझे पता है
आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है,
मुझे पता है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना ये बहुत कम है। यानी अगर मैं कहूं कि कई लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमारे मुल्क के अंदर है तो मैं शायद गलत नहीं हूं, मैंने बाकायदा इसका एक सर्वे देखा था। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, आप पहले अपने आप को सही कर लें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, प्राइवेट लोग आ रहे हैं, प्राइवेट लोग अपना ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं, ये बहुत कुछ होने की कोशिशें हैं, जरूरत ईजाद की माँ है। अगर हम अपने आप को एक जगह हम लाइन खींचते, हम एज ए पब्लिक बात कर रहा हूं, मैं एज ए पब्लिक अपनी लाइन खींच लूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब मेरा ही अपना प्रॉब्लम ऐसा है। आप बताए कभी जहाज में किसी को खड़े होकर जाते हुए देखा?
नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, सफर कम हुआ है, हो सकता होता हो, ये आसिम भाई बताएंगे।
नहीं, मैंने पायलट के साथ जंप सीट पे जाते हुए देखा है, लेकिन खड़े होते
हुए देखे, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री भी बैठ जाता है, हर स्टाफ हर सब एक दोस्ती में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आपको जान पे
इमरजेंसी में भी है सब जाते हैं।
हाँ, कभी कभी ऐसा हो, लेकिन वो भी सीट ही है, ऐसा नहीं
जंप सीट होती है,
मतलब कि वो
सीट बेल्ट बांध के ही बैठता है वहां पे,
नहीं खड़े तो स्टाफ भी नहीं होता, उनकी भी सीटें होती है। लेकिन क्या है कि अच्छा, क्या दुनिया में हर जगह पर लोग खड़े खड़े सफर कर रहे होते बसों के अंदर? नहीं, यूएई जाए, जीसीसी जाए, दुनिया के कई मुल्कों के अंदर जाए, एक बस के अंदर एक पैसेंजर आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं।
यूएई में बस में तो आप खड़े होकर सफर करते हैं,
ट्रेन में सब ना ऐसे, वो ट्रेन में ना, ट्रेन में जो ये बाय लो आप खड़े होकर सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो सिटी लिमिटेड है और आप खड़े होकर सफर करना एज पर लॉ है। लेकिन जहाँ कानून नहीं है वहां पर आपको खड़े खड़े सफर करने की कोई परमिशन नहीं देता, बल्कि चालान हो जाएगा, मतलब मना है। तो अगर हम थोड़ा रुक जाएं, संभल जाएं, और अल्लाह करे कि ये ट्रांसपोर्ट का मसला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, आई नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से यार मैं खुद को कम कर दूं माशरे से, यार नहीं नहीं हूं, चलो ट्रांसपोर्ट तो आई नहीं, अपने चले जाते हैं दुनिया से,
ये कोई अकलमंदी नहीं है भाई साहब।
हाँ,
आपने जो बातें की वो बहुत बातें अच्छी लगी, समझ में आई बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तमाम बातों पे जो है ना वो अफसोस से जो है ना एहतियात बेहतर है। जैसे आपने सिलेंडर का बताया, जो वालदेन जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सिलेंडर फट जाता है, या हम जिन बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो बातें जो है ना वो समझ में आती हैं। अच्छा, मैं मोटरसाइकिल के हवाले से बात करता हूँ कि हमारे मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो आजकल कराची शहर के अंदर जो है ना वो मोटरसाइकिलें बहुत चोरी हो रही, तो ये इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि मोटरसाइकिल वालों से मेरी एक गुजारिश है कि जो अगर वो पान लेने भी जाते हैं और मोटरसाइकिल खड़ी करके जाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल लॉक कर दें, अगर वो उसे लॉक कर देंगे तो मैं समझता हूँ 90% मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होंगी। तो इस सिलसिले में
अच्छा, लॉक ना होने की वजह से,
लॉक ना होने की वजह से मैंने खुद देखा, मेरी शॉप है और मैंने अक्सर देखा है कि वो जब मोटरसाइकिल चोरी होती है तो वो वहाँ पर आते हैं, साहब हमारी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी होती है, तो मैं पहले ही पूछता हूँ कि आपकी मोटरसाइकिल लॉक थी? नहीं, लॉक नहीं थी। तो मोटरसाइकिल लॉक ना होने की वजह से हमारी मोटरसाइकिलें चोरी होती है, और कराची शहर में आप देखें कितनी मोटरसाइकिलें चोरी।
अगर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां जो हैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मोटरसाइकिल खड़ी की जाती है ना, तो इसका जो हैंडल है, क्या हैंडल ही कहते
हैं, हैंडल
जो मोटरसाइकिल का जो हैंडल है, ये जनरली या तो इस तरफ झुका हुआ होगा, इस तरफ झुका हुआ होगा। मोटरसाइकिल या तो साइड स्टैंड पर खड़ी करते हैं या फुल स्टैंड पर खड़ी करते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा ऑटो सिस्टम हो कि जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी की जाए और हैंडल यूं हो,
लॉक हो जाए?
हाँ, जबकि साइड स्टैंड हो और या तो फुल स्टैंड पर हो, वरना तो वो गाड़ी मोटरसाइकिल चलती भी घुमाएगा तब भी लॉक हो जाएगा।
ठीक है,
लेकिन कोई टेक्नोलॉजी को ऐसी यूज हो जाए कि ये हो। अच्छा, इसी तरह जब तक साइड स्टैंड नीचे है मोटरसाइकिल का, तब तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, क्योंकि कई जगह पर सफर में देखता कि इसकी साइड, अच्छा साइड स्टैंड जिसका नीचे हो उसको तो कहने में भी डर लगता है कि
भाई स्टैंड ऊंचा कर लो।
अच्छा ये यूं करो, ये हुआ है जैसे मैं गाड़ी में हूँ, इसका साइड स्टैंड नीचे है, तो मेरे को इशारा किया है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सलाम दुआ कर रहा है, और अगर जान पहचान निकल आती है तो भी ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो यूं कर रहा होता। अच्छा, अब उसको समझाने में करेगा क्या, जिसको बोले
तो वो नीचे देखेगा,
कैसे ही नीचे देखेगा,
आवाज लगानी पड़ती है, ओ भाई साइड
आपको चोरी हो जाएगा वो। तो या तो ये साइड स्टैंड, क्योंकि फुल स्टैंड पर तो नहीं होगा ना, साइड स्टैंड वाला प्रॉब्लम होता है, तो जब तक साइड स्टैंड नीचे है मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, नंबर वन। और जब साइड स्टैंड पर मोटरसाइकिल जैसे खड़ी की या फुल स्टैंड पर जैसे मोटरसाइकिल खड़ी की और उसका मतलब कि हैंडल घूम गया, तो ऑटो लॉक हो जाए।
कुछ मोटरसाइकिल में होता है ऐसा,
वो वेस्पा में एक जमाने में वेस्पा में होता होता था,
अभी भी कुछ मोटरसाइकिल में है ऐसा ना, मतलब बिल्टन इस तरह की है कि आपने खड़ी की साइड यूं किया तो वो ऑटो लॉक हो जाए।
ऐसा अभी तक किसी मोटरसाइकिल,
एक दो मोटरसाइकिल मैंने खुद देखी है, अब मैं बाद में लगवाया,
खुद मोटरसाइकिल का बिजनेस करता हूं।
जी जी सर, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने खुद देखी,
आंख खुली तो कहा,
नहीं नहीं रियल में देखी है, मतलब ख्वाब में थोड़ी देखी थी।
मोटरसाइकिलों का मेरा बिजनेस है, तो इसलिए मुझे इन तमाम चीजों का पता है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई। हाँ, सेल्फ स्टार्ट की जो है ना टेक्नोलॉजी,
यानी मुझे ऐसा था कि इस एरा में, इस दौर में आपको बोलने की देर है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप कुछ बोलो ना तो वो मतलब हो जाता है।
तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना पड़ेगा मोटरसाइकिल वालों के साथ, उनको बुला के यहाँ बात की जाएगी, भाई इस तरीके से इस मामले को आप देखो।
अब आप क्या, तो कितने मोटरसाइकिलों से
आप जिस दिन गएंगे हम यहाँ पे,
नहीं नहीं आप बात कर लो,
मैं बात कर लेता हूँ।
आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज हो जाए ना, लोग बच जाएंगे, चेन कवर नहीं है मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो,
मतलब आजकल अब,
अच्छा शू ब्रेक 70% से ज्यादा घिस गया
ठीक है,
मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, क्लच का जो वायर है उसके ज्यादा बल खुल गए और दो चार पर ही अटक गया, दो चार दाने ले गए, इसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो, ये टूट जाएगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टेब्लिश हो जाए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल दुनिया में करोड़ों की तादाद
बहुत है,
बहुत मोटरसाइकिल,
बहुत ये खाली या नहीं है, जहां बहुत जैसे थाईलैंड मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल, मोटर कार में बैठो तो 2.5 घंटे में पहुंचोगे, यही सफर मोटरसाइकिल का 45 मिनट के अंदर।
तो यही कराची
ऑफिस टाइमिंग में, वो मैंने एक वीडियो देखी थी ऑफिस टाइमिंग में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कोई है ना रेस हो रही है बाइक्स की, लेकिन वो एक मतलब पुल से गाड़ियां उतर रही थी, पर वो कि ऑफिस जाने वाली मोटरसाइकिल
है। ये थाईलैंड में था, बैंकॉक में फैजान मदीना वहाँ हमारा था सिलसिला, तो मैं जहाँ रुका हुआ था वहां से जाना था, तो एक दिन तो गए, बापरे बाप ट्रैफिक, सेकंड डे मैं कहा यार ये इतनी देर लगेगी, इतने बोला मोटरसाइकिल, मैं कहा मोटरसाइकिल में बैठा, अब मोटरसाइकिल में बैठा भैया, मोटरसाइकिल क्या बोलती है, हम तो वैसे हमारे मोटरसाइकिल में नहीं बैठते, खुली हवा में, खुली हवा में बैठने का हमको बहुत शौक है। तो फिर यार क्यों पहुंच गए, मैं कहा क्या जरूरत है कार निकालने की भैया, आपको रोजाना कार की क्या जरूरत है, जब हमको फैजान मदीना में आकर अपना काम करना है, मोटरसाइकिल जिंदाबाद, मोटरसाइकिल पर बैठो 15 मिनट में फैजान मदीना, और कार में बैठो तो 1.5 घंटे में फैजान मदीना,
मकसद ही सफर है ना,
और तब टाइम बचाना है,
टाइम बच जाता,
और मतलब वहां वो कार की जरूरत भी नहीं थी, सीधी बात है, कार रिक्वायर्ड नहीं थी, कार एज ए प्रोटोकॉल यूज थी, सीधी बात यह है। अब यहाँ प्रोटोकॉल क्या बोलता है यार, मतलब टाइम बचाए, जल्दी पहुंचे और बैठ जाए, तो मदीना मदीना
है। आप तो बहुत बहुत पीछे ले गए, दावत इस्लामी के अवाइल में ले गए, हमें हम तो अमीर अहले सुन्नत को देखते थे, हम और आप क्या है, मोटरसाइकिल पे बार हर
50
बल्कि अक्सर ही
भाई मैं इस वक्त मैं गुलजार अभी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद बस खड़ी होती थी हमारी, और मैं जो कि निगरान था तो मैं बस भरने में लगा होता था, बस भरेगी बस भरेगी बस भरेगी, इतने अमीर सुन्नत पीछे। मैंने कह रहा कि हम दोनों घर के दरमियान जो मेन जो चीज़ थी वो गुलजार हबीब मस्जिद थी माशाल्लाह बड़ी, तो अब मैं बस भर रहा हूँ इतने में अमीर सुन्नत की मोटर अमीर सुन्नत पीछे बैठे हुए मोटरसाइकिल पर, और अमीर सुन्नत जा रहे फैजान मदीने की तरफ, मेरे को हाथ मिलाते हुए गोया के जबान हाल से कहते हुए कब पहुँचोगे इंतजार ही करते रहो। तो अभी हम ज़्यादा तेज करते थे भैया चलो निकलना है, तो सफर तो कई हमारे मतलब मोटरसाइकिल पर ही होते थे, और क्या था सफर मोटरसाइकिल ही होती थी, कारें तो बहुत बाद में आई हैं। और अब खैर हमारा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इशू है ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं हो पाता जैसा आप सोच रहे होते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, बाहर जहाँ जहाँ मोटरसाइकिल की अवेलेबिलिटी है, इंडोनेशिया में थे मोटरसाइकिल पर बैठे जकार्ता वगैरह में हम लोग,
तो मोटरसाइकिल देखें मोटरसाइकिल की कितनी गुफ्तगू हुई है, ऐसा लग रहा है मोटरसाइकिल की बात है आसिफ भाई कार की तो होगी है मोटरसाइकिल की बात।
मोटरसाइकिल के हवाले से एक बात यह है कि हमारे जो भाई हैं वो मोटरसाइकिल को कार समझ के चलाते हैं, यानी कार समझ के चलाते हैं, पीछे बच्चों की अम्मी बैठी है, उसके पीछे दो बच्चे बैठे हैं, टंकी पे तीन बच्चे बैठे हैं, और उसका बस नहीं चलता वो हैंडल पे भी एक बच्चा बिठा देता है, क्यों ससुराल जा रहे हैं अब एक बच्चे को छोड़ नहीं सकते, तो ये भी बहुत खतरनाक सफर होता है।
मोटरसाइकिल मिनी बस है
हाँ, वो उसको मिनी बस ही समझ के, और आप
नहीं रक्षे से ज्यादा पैसेंजर
जी जी
बाइक पर
मोटरसाइकिल पर,
खास तौर पे ईद के दिन।
इस पे मेरी मोटरसाइकिल वालों से दरखास्त है कि मोटरसाइकिल का एक वेट तय कर लें, इससे ज्यादा अगर वेट मोटरसाइकिल पर डाला गया तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। ये सिर्फ प्रोटेक्शन लेवल के, ये जो जितनी मेरी गुफ्तगू है ना ये प्रोटेक्शन लेवल पर है, जैसे कि वो लिफ्ट जो हमारी लिफ्टें हैं जो बिल्डिंगों में लगी होती हैं
जी जी चार आदमी से ज्यादा बैठेंगे।
अच्छा आप देखें लिफ्ट भी क्या है, लिफ्ट में दो चीजें दी गई हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर और वेट
वेट,
और तो बाजों का पैसेंजर कम होते हैं फिर भी सिटी बज रही होती है कि जितने भी हैं ना सारे ओवर वेट हैं, अब लिखा ऐसे हिसाब से कि भाई उनकी एवरेज होगी कि मतलब वो जापान वापान में नहीं होता इतना आदमी भारी भरकम, चाइना में तो वो होता होगा 65-60 केजी का,
70 किलो का,
अब यहाँ हमारा बच्चा होता है इतने का, तो ठीक है तो अब ये मतलब कि 100-150, 100-110 वाला जब लिफ्ट पे बैठेगा तो एक एक आदमी दो दो का हो गया ना,
बिल्कुल सही,
एक आदमी डेढ़ का हो गया
जी।
तो वो फिर भी सिटी बजा देती है, तो लेकिन सिटी का फायदा क्या हुआ, इसकी जो बीप बजी फायदा का लिफ्ट ऑपरेट नहीं करती, अल्लाह ना करे गिर जाएगी, तो अगर इस तरह मतलब कि अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसा व्हीकल है जो के ओवरवेट हो गया इसके ऊपर है वो बंद हो जाए चले नहीं रुक जाए, यानी ये सारी चीजें जान बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ।
मेरी नवासी पैदा हुई अमेरिका में, उसको हॉस्पिटल से घर जाना था, वो जब तक हॉस्पिटल से मेरी नवासी को लेकर नहीं जा सके जब तक के कार की बेबी सीटर उन्होंने खरीदी नहीं।
अब मैं मोटरसाइकिल के वालों के अगेंस्ट में हूँ आसिफ भाई, तो खुदा ना खासा अगर ना हाथ छूटा या वो तो बहुत रिस्क पे है बच्चा ना, उसको बच्चे को बचाएगा बाइक।
अभी हम जो बात कर रहे हैं ना इसमें लाखों मुबतला है, सीट बेल्ट जो है ना इसका भी कई मैकेनिज्म है, मुझे नहीं पता था, मैं तो सीट बेल्ट लगा दिया। एक दफा मैं इसी तरह सफर में था बाहर, तो कोई इमरजेंसी में जो गाड़ी चला रहे थे इन्होंने जबरदस्त ब्रेक मारा, जैसा जो ब्रेक मारा ना सीट बेल्ट जो है ना मेरा बिल्कुल जैसे के मैकेनिज्म की तरह खींच गया।
निगरानी शुरा इमरान बैठे हुए, लेकिन अभी उतारने के बाद नहीं पता है क्या निगरानी शुरा
कर, मैं कुछ करके चला जाना मसला नहीं है ऐसा, मेरे नाम पर ये कुछ करके ना चला जाए।
मद्दी काफलों की तरबियत से मुझे ये तमाम चीजों का पता चला कि मुझे तमाम काम करने चाहिए, तो मैं अब अपने हाथ से उठ के पानी पीता हूँ, अपने हाथ से उठ के खाना खाता हूँ, अपने कपड़े जो है वो लपेट के रखता हूँ।
मैं सऊदी अरब से जब शिफ्ट हुआ था तो ये कुछ 3-4 साल से मेरी कमर के यहाँ मोरे में दर्द था, मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और कई इलाज भी किए, टेबलेट्स भी ले रहा था, जब एतकाफ से मैं निकला हूँ ना मुझे नहीं पता चला मेरा दर्द आ गया।
तजरीबात की दुनिया, तजरीबात की।